शिशुपाल वधम प्रथमा सर्ग श्रियापति श्रीमती शासितुम जगत जगनिमाशः वसुदेव सद्मनि वसंत दर्शावतार तंबराधीरण्य गर्भांग भुवम मुनिम हरि। श्लोक संख्या एक अन्वय। श्रियापति जगनिमाशः जगत शासितुम श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन हरि अम्बरावतरंतम हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम ददर्श। समास शयति हरिम यास्ताश्री तस्याश्री शिर्विद्यते यस्मिन् तत् श्रीमत् तस्मिन् श्रीमती निवसन्ति जना अस्मिन् असौ निवासा जगताम् निवासा जगनिवासा तत्पुरुष वसुदेवस्य सद्यम वसुदेव सद्यम तस्मिन् वसुदेव सद्निम् सद्मनि तत्पुरुष हिरण्यस्य गर्भ हिरण गर्भ अंगात भवतीति अंगभू हिरण गर्भस्य अंगभू हिरण गर्भांगभू तम हिरण गर्भांगभुवम् तत्पुरुष। वैयाकरणम् श्रीमती श्री धनमतु शासितुम शाशु धन भावे तुमन इडांगमा गच्छति जगत गम धन कर्तरी क्वेप निवासा नी वश अधिकरणे घई वसन वस धन शात्री अवतरंतम अवधंत्री धन शात्री तदर्श दृश धन लिट धन तिप धनल अंग भुवम अंगभू धन किप लोप अमी उवंग। हिंदी अनुवाद। श्री महाकवि मागशी शब्द प्रयोग पूर्वक श्री कृष्ण के नारद दर्शन रूप वस्तु का निर्देश करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। लक्ष्मी के स्वामी समस्त लोगों के निवास स्थान संसार का शासन करने के लिए अत्यंत शोभायमान वसुदेव के घर में निवास करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को देखा। टिप्पणी शिशुपाल वधम शिशुपालस्य वध शिशुपाल वध सवर्णीयो यस्मिन् काव्ये तत्त शिशुपाल वधम व्याधिकरण बहुव्री शिशुपाल के वध का जिसमें वर्णन है वह काव्य पुराणों के अनुसार रुक्मिणी लक्ष्मी के अवतार रूपा मानी जाती है तथा वसुदेव कश्यावतार और श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जगन्निवासा प्रलय काल में संपूर्ण चराचर जगत उस परम ब्रह्मा परमात्मा में लीन हो जाता है जैसे कि गीता में कहा गया है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो वृज्याम्यहम् 9-7 तथा सदधार पृथ्वीम धातु में ताम यजुर्वेद हिरण्यगर्भांग भुवम ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न होने वाले अर्थात ब्रह्मा पुत्र नारद मनुस्मृति में बताया गया है कि ईश्वर ने अपने शरीर से विविध जीवों की सृष्टि की इच्छा से सबसे पहले जल को उत्पन्न किया तब उसमें सृष्टि का बीज डाल दिया वह बीज स्वर्णमय अंड रूप हो गया और उसी अंडे से संपूर्ण लोगों के पिता ब्रह्मा पैदा हुए इसलिए ब्रह्मा का नाम हिरण गर्भ है। भागवत के अनुसार ब्रह्मा के शरीर से 10 प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई उनमें एक नारद भी है जो ब्रह्मा की गोद से उत्पन्न हुए हैं। 10 प्रजापतियों की उत्पत्ति का वर्णन भागवत में कहा गया है। गतम तिरस्ची नमनूरु सारथे प्रसिद्ध मुधर्व ज्वलनम हवीर भुजा पतत्यधो धान विशारी सर्वतः किमे तद्दित्या कुल विक्षितम जनई। श्लोक संख्या 2 अन्वय। अनुरुसारथे कृतम तिरश्चीनम हवीर भुज उधर्व ज्वलनम प्रसिद्धम सर्वता विशारी धाम अद्ध पतति एतम किम एतत किम इति जने आकुलम इच्छितम। समास अविधानो उरु यस्यासौ अनुरु अनुरु सारथि यस्य स अनुरुसारथि तस्य अनुरुसारथे बहुव्रीहि हवीर भुक्कते इति हविभुर्क तस्य हविभुर्ज तत्पुरुष उधर्व तस्य ज्वलंश उधर्व ज्वलनम। व्याकरणम व्याकरणम गतम गम धन भावे का अनुनासिक लोप तिरश्चीनम तिरस्तन अचधन विभाष चेर द्वितीय स्त्रियाणाम इति स्वार्थे खा इनादेश प्रसिद्धम प्रधन सिद्धन कक्त विशारी विधन श्रीधरणिनी इक्षितम इष्टन भावे कक्त। हिंदी अनुवाद। सूर्य की गति तो तिरछी होती है और अग्नि का ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है परंतु यह तो सब ओर फैलने वाला तेज नीचे की ओर गिर रहा है यह क्या है इस प्रकार द्वारिकावासी लोगों ने व्याकुलता पूर्वक देखा। टिप्पणी अनुरुसारथी कश्यप की विंता नाम की स्त्री से जो एक पक्षिणी थी दो अंडे उत्पन्न हुए उनमें से एक अंडे को अर्धपका ही फोड़ डाला इस अंडे से जो बच्चा पैदा हुआ उसके ऊपरी अवयव तो पूर्णता बन गए थे लेकिन पैर के अवयव अभी पूर्ण नहीं हुए थे इसलिए उसका नाम अनुरूप पड़ा। पूर्ण ताप न मिलने के कारण उसे सूर्य के ताप की आवश्यकता प्रतीत होती थी इसलिए कश्यप के आदेश से इस बच्चे को सूर्य का सारथी बना दिया गया जो आज भी सदा उसी के साथ रहता है इसी का नाम अरुण है। दूसरे अंडे से जो पूर्ण पक जाने पर फोड़ा गया था उसे गरुड़ पैदा हुए। चस्ति विश्वामित्वधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविता कृतिं विभुर्वि भक्ताव्ययम् पुमानिति क्रमादमु नारद इत्यबोधि सा। श्लोक संख्या 3 अन्वय विभूषा पुरात विश्याम चया इत्यवधारितुम तथा विभाविता कृतिम शरीरिति विभक्ताव्यम पुमानिति अमुम क्रमात नारद इत्यबोधि। समास विभाविता आकृतरस्य सा विभाविता कृति तम विभाकिता कृतिम बहुव्रीहि विभक्ताव्य यस्य सा विभक्ताव्य तम विभक्ताव्यम बहुव्रीहि वैयाकरणम च ची धन भावे अवधारितम अवदन्धि नर्णिच धन कक्त इंडागम शरीरी शरीर धन मत्वर्थे इनि अबोधि बुद्धन कर्तरी लुंग धन ता दीपजन बुद्धम इत्यादि चिड़ चिड़ो लुक इति तस्य लुकी। हिंदी अनुवाद। तदंतर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें स्नेह स्नेह पहचान लिया। वे कहते हैं वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण ने उस आकाश से आते हुए पुरुष विशेष को पहले तेजपुंज समझा। तदंतर थोड़ा नीचे आने पर कुछ कुछ हस्तादि अवयव के झलकने पर या कोई प्राणी है ऐसा समझा। इसके बाद और नीचे आने पर मुखादि अवयव के दिखाई पड़ने पर कोई पुरुष समझा। इस क्रम से अंत में ये नारद है ऐसा जाना। टिप्पणी यहाँ से क्रमादमु नारद इत्यबोधि सा इस वाक्यांश का संबंध अगले 7 श्लोकों में भी रहेगा। अतः अबोधि इस एक ही क्रिया के 8 श्लोकों में अन्वित होने से यहाँ 8 श्लोकों का कुलक है। 5 या उससे अधिक श्लोकों में एक क्रिया के अन्वित होने पर कुलक होता है। जैसा कि साहित्य दर्पण में कहा है छंदोबद्ध पदम पद्यम तेन मुक्तेन मुक्तकम द्वाभ्याम तु युग्मक संदानिकतम त्रिभिरिष्यते कल्पाकम चतुर्भिश्च पंचभिः कुलकम मतम इति। नवान धोधो बृहता पयोधरान समुंड कर्पूर पराग पांडुरम क्षणम क्षणोत्पक्षितम गजेंद्र कृतिना स्फुटोपम भूतिसितेन संभुना। श्लोक संख्या 4 अन्वय नवान वृत्ता पयोधरान अधोधद समुंड कर्पूर पराग पांडुरम क्षणम क्षणोत्पक्षित गजेंद्र कृतिना भूतिसितेन संभुना स्फोटप पम अमु। समास धरंतिति धरा पैसा धरा पयोधरा तान पयोधरम तत्पुरुष कर्पूरस्य पराग कर्पूर पराग समुंड चासो कर्पूर पराग समुंड कर्पूर पराग समुंड कर्पू पराग इव पाडुरा समुंड कर्पू पराग पाडुरा तम कर्मधार्य गजानाम इंद्रो गजेंद्र तत्पुरुष गजेंद्रस्य कृति गजेंद्र कृति तत्पुरुष षडे उच्छिता गजेंद्र कृति तेन सह तेन बहुव्रीहि स्फुटोपमायस्य सा तम बहुव्रीहि भूत्यासीतो भूतिषित तेन तत्पुरुष वैयाकरणम पयोधरान इत्यर्थ उभयसर्वस्व कार्या धिगुपर्यादिशो त्रिशो इति वार्तिकेन अधोधद शब्दयोगे द्वित्या षडमित्यत्र अत्यंत संयोगे द्वित्या। हिंदी अनुवाद। यहाँ से लेकर 7 श्लोकों में नारद जी का वर्णन करते हैं। नवीन अत्येव जलपुर होने से कृष्ण वर्ण वाले बड़े बड़े बादलों के नीचे स्थित देर किए हुए या पीसे हुए कर्पूर की धूली के समान श्वेत वर्ण अतेव तांडव के समय अपने ऊपर हाथी के चर्म को ओढ़े हुए तथा भस्म पोतने से शुभ्र वर्ण वाले शिव जी के समान प्रतीत होने वाले नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया। टिप्पणी कहा जाता है कि गज नामक एक असुर ने जो मारने पर भी अपने चर्म से भूमि का स्पर्श होने पर पुनर्जीवित हो जाता था सब देवता मनुष्यों को पीड़ित करना प्रारंभ किया। इससे दुखी होकर उन्होंने शिव की शरण ली। शिव जी ने उस राक्षस को मारकर उसके चर्म को अपने ऊपर धारण कर लिया। अतएव वह पुनर्जीवित न होकर संसार को पीड़ित न कर सका। तभी से शिव जी का नाम कृतिवाशा अर्थात चर्म को धारण करने वाला पड़ा। दधानम्भोरुह केशर धूतीर जटा सरश्चंद मरीचीरो चीशम विपाक पिंकास्तुहीन स्थली रूहो धराधरेन्दम वर्त तीतरी तीरीव। श्लोक संख्या 5 अन्वय अम्बरो रूह केशर धुति जटा दधानम सरश्चंद मरीचीरो चीशम विपाक पिंगह तुहीन स्थली रूह वर्तिति दधानम धराधरेन्दमीव। समास अम्बसी रोहंती अम्भो रूहानी तत्पुरुष सरश्चंद सरश्चंद्र तत्पुरुष विपाकेन पिंगा विपाक पिंगा ता विपाक पिंगा तत्पुरुष धरंती धरा धराया तेषमिन्द्रस्त तम धराधरेन्दम तत्पुरुष वैयाकरणम धानम धादंसानच तुहिन स्थली रूह तुहिन स्थली धनरू धन क्विप धनसस हिंदी अनुवाद कमल के केशर के समान कांति वाली जटाओं को धारण किए हुए शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान कांति वाले अतेव परिपाक से पीतवर्ण बर्फीली भूमि से उगने वाली लताओं के समूह को धारण किए हुए पर्वतराज हिमालय के समान प्रतीत होने वाले उस पुरुष विशेष को श्री कृष्ण ने ये नारद है ऐसा जान लिया। टिप्पणी कुछ आलोचकों के मतानुसार बर्फीली भूमि में लताओं की उत्पत्ति न होने से यह अपमान असंगत है, परंतु दूसरे लोग विषकीट न्याय से उसका समाधान इस प्रकार करते हैं, जिस प्रकार विष में उत्पन्न होने वाला कीट उसी विष को खाता हुआ बढ़ता है, उस विष से मरता नहीं, इसी प्रकार यहाँ भी बर्फीली भूमि में लताओं का उत्पन्न होना और पकना कहा है। पिशंग मौंजी युजम जुनस छवीम वशान मेला जिन मंजन धुति सुवर्ण सूत्रांक लीता धराम्बराम विडम्बयंतम शिति वाश सस्तुनुम। श्लोक संख्या 6 अन्वय पिशंग मौंजी युजम अर्जुनम अक्षवीवम अंच जन धुति एणांजिनम वशानम स्वर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम शिति वास सस्तनु विडम्बयंतम समास एड़स्य अजिनम एड़ाजिनम तत् एड़जिनम तत्पुरुष अजन्यस्य धुतिरिव धुतिरस्य तव अजन्य धुति बहुव्रीहि स्वर्णस्य सूत्रम तत्पुरुष स्वर्ण सूत्रम अर्जुना छवियस्य सह तम अर्जुनस्य छवियम बहुव्रीहि। वैयाकरण पिसंग मौंजी युजम पिसंग मौंजी धनयुज धन किक धन अम वशानम वस्थन सानच विडम्बयतम विडम धनडित धन शत्तु धन अम। हिंदी अनुवाद पीली मुंज की करधनी पहने हुए स्वर्ण वर्ण वाले और काले मेघ चर्म को धारण किए हुए सोने की करधनी से बंधी हुई नीली धोती वाले बलराम के शरीर का अनुकरण करने वाले उस पुरुष को ये नारद है ऐसा समझ लिया। टिप्पणी ब्राह्मण की मेखला मुंज की छतरी की मुरवा घास की धनुष की डोरी के समान और वैश्य के सन के धागे की बनी हुई बराबर बराबर तीन लड़ियों वाली चिकनी होनी चाहिए, जैसा कि मनुस्मृति में कहा है मौंजी त्रिवस्समा क्षणक्षा कार्या विपरस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्वी जयावश्यस्य क्षणतान्तवी। विहंग राजांग रुहेर वार्तेर हिरण्यो विरुहव्य लित्तन्नुभि कृतोपवित्तम हिम शुभ मुंचकेर धनम धनान्ते दंडितांग रेडी। श्लोक संख्या 7 अन्वय विहंग राजांग रूहे इव आयतहि हिरण्यमयोर विहुहव्लति तनुभि कृतोपवित्तम हिम शुभ्रम धनान्ते तंडितांगे उच्चकै धनम इव समास विहसा गच्छन्तीति विहंगा तेषां राजा विहंग राजा तस् अंगरूहा तै विहंग राजा गुरुहे। षष्ठी तत्पुरुष कृतम उपवीतम येन स तम कृतोपवीतम बहुव्रीहि घनानानम अंत घनांता तस्मिन् घनान्ते। षष्ठी तत्पुरुष वैयाकरण आयन्ते आधनियम धन कक्त उच्चकै उच्चरित्य वयथा अव्य सर्वमानमा सर्व नाममान कच्च प्रकटे इति स्वार्थी अकच्च गणैः इत्यथम भूत लक्षणे तृत्या हिरणस्य विकार हिरणमयी इत्यर्थ दंडी नायन त्यासदीना मयटि जलोपनिपात। हिंदी अनुवाद पक्षीराज गरुड़ के केशों के समान लंबे लंबे स्वर्णमयी भूमि में उत्पन्न होने वाली लताओं के तंतुओं से बने हुए यज्ञोपवीत को धारण किए हुए बर्फ के समान अत्यंत शुभ वर्ण शरत काल में बिजली से युक्त मेघ के समान शोभायमान नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया। निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा लसद विषक छेद सीतांग संगिना चकासतम चारु चमरु चमणा कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम। श्लोक संख्या 8 अन्वय निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा लसदवि छेद सीतांगम संगिना चारु चमुर चमणा कुथेन इंद्र वाहनम नागेंद्रम इव चकासतम। समास चमुरो चर्म चमरु चरम चारु च तत् चमरु चरम च चारु चमरु चरम तेन चारु चमरु चर्मणा तत्पुरुष नागानम इंद्रो नागेंद्र तम नागेंद्रम तत्पुरुष इंद्रस्य वाहनम इंद्र वाहनम तद इंद्र वाहनम तत्पुरुष। वैयाकरण चकासतम चकाश्री धन क्षत्रि रक्षित्यादित्वेन अभस्य तत्वात् नाभस्य तक्षु छतु इति नुम्भवा वाहनम व धन स्वार्थे ऋच कर्तरी ल्यु। हिंदी अनुवाद स्वभावता चित्कब्री तथा उज्ज्वल रोम वाले शोभमान कमल लाल के खंड के समान शुभ्र वर्ण शरीर पर पड़े हुए सुंदर चमुरु मिग्र के चर्म से अनेक रंगों से चित्रित तथा सूक्ष्म सूत वाले एवं शुभ्र वर्ण वाले झूल से इंद्रवाहन गजराज एरावत के समान शोभित होते हुए नारद जी को श्री कृष्ण भगवान ने पहचान लिया। अजस्त्र मास थलाक लित वल्ली की गुण छतोश्वलांक गुष्ट नखांसु भिन्नया पुरह प्रवाले रिव पुरितार्थया विभांत मच्छ स्फटिक काक्ष माल्या। श्लोक संख्या 9। अन्वय अजस्त्रम अस्फालित वल्ली की गुण छतोज्वलांक गुष्ट नखांसु भिन्नता पुरह प्रवाली पुरितार्थया इव अच्छ स्फटिक काक्ष माल्या विभांतम समास पुरितम अर्धयस्य स तया पुरितार्ध्या बहुव्रीहि अच्छास्य ते स्फटिकाक्ष अच्छ स्फटिका तेषाम अक्षमाला तया अक्ष स्फटिकाक्ष माल्या तत्पुरुष वैयाकरण अजस्त्रम न जस्यति मुंचति इति न धन जस धन रा विभांतम वीधन भाधन क्षत्रि। हिंदी अनुवाद। निरंतर बजाए गए वीड़ा के तारों के संघर्षण से उज्जवल अंगूठे के नख की किरणों से मिश्रित सामने के आधे भाग में मुंगों से परिपूर्ण सी स्वच्छ स्फटिक मणि की अक्षमाला से शोभित होते हुए उस पुरुष विशेष को ये नारद है ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने इसने ही जाना। रणद भीरांगतनया नभस्वतः पृथ्वी अग्नि भिन्न श्रुति मंडल स्वर स्फुटि भवद ग्राम विशेष मूर्छना नाम वेक्षण माणम महतिम मुहुर मुहु। श्लोक संख्या 10। अन्वय नभस्वतः आघंटनया पृथक रणधि विभिन्न श्रुति मंडल स्वर स्फुटि भवद ग्राम विशेष मूर्छना महतिम मुहुर मुहु अवेक्षण माणम। समास श्रुति नाम मंडलानि श्रुति मंडलानि विभिन्नतानि श्रुति मंडलानि येषां ते विभिन्न श्रुति मंडले तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि स्फुटि भवन्त्या ग्राम विशेषणां मूर्छना यस्यां सा ताम स्फुटि भवद ग्राम विशेष मूर्छनां बहुव्रीहि। वैयाकरण रणद्भि रणधन क्षत्रि अवेक्षमाणम अवधन इषधन शानश आघट्टन्या आदन घट्टन स्वार्थे ऋच धन युच स्फुटि भवत स्फुट धन शिव धन भू धन क्षत्रि धन लिप। हिंदी अनुवाद। वायु के आघात से स्पष्ट ध्वनि करते हुए एवं व्यवस्थित स्वर समूह वाले 7 स्वरों से जिसमें 3 ग्रामों के स्वरों का आरोह तथा अवरोह क्रम स्पष्ट हो रहा था उस महती नाम की वीड़ा को बार बार देते हुए नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया। टिप्पणी स्वर श्रुति से उत्पन्न होने वाले अनुकरणात्मक उस स्वर मधुर ध्वनि का नाम स्वर है जो कि सुनने वाले के हृदय को आनंदित कर देती है। स्वर 7 होते हैं षडर ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद। इन्हीं को संक्षेप में सारी ग म प ध नि कहा गया है। इसमें श्रुतियों की संख्या का नियम इस प्रकार है षडर मध्यम तथा पंचम में 4-4 निषाद तथा गांधार में 2-2 और ऋषभ तथा धैवत में 3-3 श्रुतियां होती है। श्रुति सर्वप्रथम उच्चरित होने से ह्रस्व मात्रा वाले जो शब्द श्रोता के कानों तक पहुंचता है वह श्रुति कहलाती है। यह श्रुति ही स्वरों की उत्पादिका है। ये 22 होती है। इसके नाम संस्कृत टीका में देखें। ग्राम स्वरों के समूह विशेष को ग्राम कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है षडज ग्राम मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। नध्यावर्त जिमुन तथा समुद्र ये 3 षडाजादी 3 ग्रामों के उत्पादक माने जाते हैं। मूर्छना इन 7 स्वरों के चढ़ाव एवं उतराव के क्रम को मूर्छना या मूर्छा कहते हैं। तीनों ग्रामों में अलग अलग 7-7 मूर्छाएं होती हैं। इस प्रकार तीनों ग्रामों में मिलाकर 21 मूर्छाएं होती हैं। प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छाओं के नाम ये हैं अरावीनी विश्वभृता तांद्री हेमा कर्पदिनी मैत्री वार्षपता महती। यह नारद की वीड़ा का नाम है।